ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 25। आप लोग मेरे पीछे बोले ठीक है, बोल सकते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। शब्दार्थ बोलिए। भीष्म पितामह, द्रोण गुरु, द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेषां सबों के च भी महीक्षितां संसार भर के राजा उवाच कहा पार्थ हे प्रथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबों को समवेतान एकत्रित कुरून कुरुवंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो हम लोग प्रार्थना बोलेंगे, आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखता के सामने और अन्य समस्त राजाओं के सामने क्या किया? रथ को खड़ा करके और कहा, क्या कहा? हे पार्थ, यहां पर सारे एकत्र कौरवों को देखो। कुरुवंश, पूरा कुरुवंश यहां इकट्ठा हुआ है, इसको देखो। भगवान ने कहा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस श्लोक में ऋषिकेश शब्द नहीं है, लेकिन ऋषिकेश शब्द पिछले श्लोक में है, तो पिछला श्लोक और यह श्लोक दोनों जुड़े हुए हैं। पूरा वाक्य जो है दो श्लोकों में पूरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ कि ऋषिकेश उवाचन। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि वे सब कुछ जानते थे। ऋषिकेश का मतलब जो सब कुछ जानता है। कैसे? ऋषिक माने इंद्रियां और ईश माने ईश्वर स्वामी जो नियंत्रण करते हैं। तो इंद्रियों में जो है पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मन को भी इंद्रिय कहा जाता है। मन भी एक इंद्रिय है। और अगर ज्यादा व्यापक अगर समझा जाए तो बुद्धि भी एक इंद्रिय है। तो भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी है, मन के भी स्वामी है, बुद्धि के भी स्वामी है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। इसका मतलब है कि अर्जुन के मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ जानते हैं भगवान, है ना। इसलिए भगवान ने क्या किया? इसलिए कहा अर्जुन को। प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान का भाव है घनिष्ठ मित्र, क्योंकि बुआ का लड़का, अपनी बुआ का लड़का बहुत ही घनिष्ठ होता है, है ना। तो भगवान की बुआ के लड़के हैं अर्जुन, इसलिए बहुत घनिष्ठ है पार्थ, प्रथा के पुत्र। और इसके अलावा कुंती माता बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान के, कृष्ण के बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उनके पुत्र होने के कारण भी कृष्ण अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, है ना। तो मित्र हैं पार्थ। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, इसका मतलब बहुत अंतरंग मित्र। तो प्रभुपाद लिखते हैं मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया है। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं और भगवान को कहा जाता है पार्थ सारथी, है ना, इसका मतलब क्या है? पार्थ का विशेष मतलब है, क्योंकि उनके पिता वसुदेव जी हैं, वो महान भक्त हैं। वसुदेव जी की बहन कुंती देवी महान भक्त हैं, है ना। तो इस प्रकार से कई कारण हो जाते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। उनके पिता की बहन का लड़का है इसलिए भी, और फिर उनकी पिता की बहन भी बहुत बड़ी भक्त है इसलिए भी, है ना, और अर्जुन स्वयं भी बहुत बड़े भक्त है इसलिए भी। इस प्रकार से तीन तीन कारण होते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। आप प्रभुपाद लिखते हैं किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? कि अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहते थे? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहास वश दी है। मतलब भगवान परिहास कर रहे हैं, परिहास मतलब मजाक, भगवान अर्जुन से मजाक कर रहे हैं। अर्जुन की स्थिति जानते हैं, अर्जुन की कमजोरी जानते हैं, है ना, तो भगवान जो है मजाक कर रहे हैं। मतलब भगवान का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा संबंध तो ज्यादा मुझसे है, क्योंकि तुम मेरे पिता वसुदेव जी की बहन के पुत्र हो, है ना, तो तुम्हारा संबंध मुझसे ज्यादा है, तो फिर इनसे तुम्हारा ज्यादा मोह क्यों है? तो पार्थ कहकर के प्रभुपाद जी जो है अर्जुन के प्रति भगवान का जो मनोभाव है वो बता रहे हैं कि कितना गहरा मनोभाव है। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ इन कौरवों को देखो। अर्जुन को कुरुनंदन भी कहा जाता है, कुरु वंश में अर्जुन पैदा हुए, तो भगवान अर्जुन को कुरुनंदन नहीं कह रहे हैं। गीता में है कहीं कहीं भगवान ने अर्जुन को कुरुनंदन कहा है, यहां पर कुरुनंदन नहीं कह रहे हैं। कुरुन मतलब कौरवों को तुम देखो, लेकिन तुम कौरव बाद में हो, कुरु से तुम्हारा संबंध बाद में है, और पहला संबंध मेरा मुझसे है तुम्हारा। इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं कि हे पार्थ देखो। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का कहने का मतलब यह है, व्यंग कर रहे हैं कि क्या फिर भी तुम जो है युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम युद्ध करने से रोकना चाहते हो? क्योंकि भक्त को जो है भगवान से ज्यादा मतलब होता है, भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने की इच्छा होती है बाद में बाकी दुनिया, है ना, पहले भगवान होने चाहिए, है ना। तो भगवान का ये सारा है कि तुम्हारा झुकाव जो है किधर है, उधर है या इधर है? इधर मैं हूं, उधर वो है, पूरी दुनिया उधर है और इधर मैं हूं, तुम्हारा झुकाव किधर है, किधर ध्यान है? भगवान ही अर्जुन से ये कहना चाहते हैं, है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन पत्रिका में, वो पुस्तक रूप में भी प्राप्त है, आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें भाग 25 है, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इस श्लोक की और भी जो है कुछ गहराइयां हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर बाद में प्रश्न कर सकता हूं आपसे। ये श्लोक पूर्व श्लोक से संबंधित है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। अर्जुन के कहने पर इन शब्दों से संजय धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि यह संपूर्ण भगवद गीता अर्जुन के ही कार्यकलापों से संबंधित है, क्योंकि धृतराष्ट्र की इच्छा अपने तथा पांडु के पुत्रों के कार्यकलापों को जानने की थी। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र ने गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न क्या किया, माम कहा पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है ये फिर संजय क्यों बता रहे हैं? एक प्रश्न हो सकता है कि जब धृतराष्ट्र ने भगवत गीता के प्रारंभ में ये पूछा कि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया जो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो फिर संजय को भगवत गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? धृतराष्ट्र ने तो पूछा नहीं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ, तो फिर संजय ने इतना विस्तार से कृष्ण अर्जुन का संवाद क्यों सुनाया? इसमें यह बताया जा रहा है कि संजय धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन के ही कार्यकलापों से संबंधित है, है? और अर्जुन कौन है? अर्जुन पांडु के पुत्र हैं, है ना? तो पांडु के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है, है ना? तो चूंकि उन्होंने धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्योधन है, तो दुर्योधन का कार्यकलाप बताया संजय ने, है? कि वो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा, क्या क्या बातें कही, और उसके बाद फिर अर्जुन का कार्यकलाप शुरू कर दिया, तो अर्जुन के साथ चूंकि कृष्ण है तो कृष्ण की बात भी आ गई। यद्यपि धृतराष्ट्र ने कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन अर्जुन चूंकि पांडु के पुत्र हैं तो उनके कार्यकलाप में कृष्ण की बात आ गई, और फिर अर्जुन ने जो कुछ सुना भगवान कृष्ण से तो अर्जुन के कार्यकलाप के रूप में वो पूरी भगवद गीता आ गई। वो इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर ही है भगवद गीता। आगे, यद्यपि श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया था, परंतु इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने विशेषतः भीष्म और द्रोण के समक्ष रथ को खड़ा किया। अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, है ना? तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में बहुत जगह थी, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने की बहुत जगह थी, लेकिन विशेष रूप से भगवान ने कहा खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण का दर्शन कराना चाहते थे। ठीक है, किसने अर्जुन के रथ को भीष्म द्रोण के सामने विशेष रूप से खड़ा किया? अर्जुन सबसे पहले किसको देखें? भीष्म और द्रोण को देखें। किस लिए? चूंकि अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए ताकि मैं देख सकूं कि यहां पर युद्ध करने की इच्छा से कौन कौन खड़े हैं तथा उनमें से किन किन के साथ मेरा युद्ध करना उचित है, है ना? तो विशेष रूप से अर्जुन देखना चाहते थे क्या कि मेरा उचित किन के साथ युद्ध करना है, है ना? इसका मतलब बहुत बड़े जो योद्धा हैं, बहुत बड़े महारथी हैं, है ना? वो मक्खी मच्छर थोड़ी, अर्जुन के सामने मक्खी मच्छर थोड़ी युद्ध करेंगे, है ना? बाकी योद्धा सब मक्खी मच्छर के समान हैं, है ना? बड़े योद्धा कौन है? भीष्म है, द्रोण है, उनके साथ युद्ध होना चाहिए। तो अर्जुन ने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें कभी भीष्म तथा द्रोण के साथ भी युद्ध करना होगा। अब देखो, अर्जुन ने जैसा कहा वैसा भगवान ने तो कर दिया, लेकिन अर्जुन कभी नहीं सोचते कि भीष्म द्रोण के साथ मेरा युद्ध हो सकता है, कभी अर्जुन ने कभी नहीं सोचा। लेकिन जैसा अर्जुन ने कहा वैसा भगवान ने तो किया, भगवान की दृष्टि में युद्ध होना चाहिए, उचित है, भीष्म द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है, लेकिन अर्जुन की दृष्टि में कभी नहीं सोच सकते, हिम्मत, सोचने की भी हिम्मत नहीं है, करने की तो बात छोड़ो, सोचने की भी हिम्मत नहीं की अर्जुन ने कभी। भीष्म तथा द्रोण के प्रति अर्जुन की अत्यधिक सम्मान की भावना थी, बहुत सम्मान की भावना थी, उनके साथ युद्ध करने का विचार भी अर्जुन के लिए अत्यंत दुखदायी था। भीमसेन को कोई दिक्कत नहीं, भीमसेन को कहा जाए तो तैयार है युद्ध करने के लिए, ये अर्जुन के लिए नहीं, बहुत दुख है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार ले जाते हैं कि अर्जुन ने सर्वप्रथम किसको देखा? भीष्म तथा द्रोण को देखा। भीष्म तथा द्रोण को ही देखा श्री कृष्ण को। इसके पिछले श्लोक में ऋषिकेश कहा गया है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ का ही संचालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन की इंद्रियों का भी संचालन कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन की इंद्रियों का भी संचालन कर रहे हैं बाहर से और भीतर से ऋषिकेश। श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन ये देखें कि उनका भीष्म तथा द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है। अर्जुन को समझना चाहिए। जो अर्जुन नहीं समझना चाहते हैं वो अर्जुन को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के रथ को वहीं खड़ा किया। देखो यहां पर कहा गया है भीष्म द्रोण प्रमुखता, अर्थात अर्जुन भीष्म और द्रोण को सामने बहुत निकट से देख रहे हैं। प्रमुख, प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मुख आमना सामना, बहुत ही निकट पर खड़ा कर दिया। बहुत निकट पर खड़ा कर दिया मतलब अर्जुन के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत क्या हो गया, दुख हो गया। ये मैं कहां पर आ गया, कहां पर आ गया। यद्यपि अर्जुन को युद्ध से कभी भी भय नहीं हुआ, परंतु यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भयानक है, क्योंकि अर्जुन अधर्म से डरते हैं, उनको भीष्म और द्रोण से डर नहीं है। किस बात से डर है? अधर्म से डर है, अधर्म से डरते हैं। शास्त्र के अनुसार भीष्म और द्रोण दोनों ही अर्जुन के महान गुरु हैं। महान गुरु भीष्म जी कुरुवंश के पितामह और द्रोण कुरुवंश के आचार्य हैं। दोनों कुरुवंश के बहुत बड़े गुरु हैं, एक पितामह एक आचार्य हैं। इस अध्याय में आगे चलकर अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए श्री कृष्ण के समक्ष अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, परंतु दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों को दिमाग का कूड़ा करकट बतलाते हैं। जितनी बातें कहीं भगवान ने क्या कह दिया, सब बेकार है तुम्हारा, कूड़ा करकट। अर्जुन सोचा कि बहुत अच्छे अच्छे मैंने तर्क दिए हैं युद्ध ना करने के लिए, कृष्ण कहे सब बेकार है, फेंको ये, कूड़ा करकट है। इस बात पर अर्जुन ने युद्ध ना करने के पक्ष में श्री कृष्ण को समझाने के लिए सबसे अधिक प्रबल तर्क दिया कि ये कैसे हो सकता है कि मैं भीष्म तथा द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। ठीक है, सब बातें अगर आपने कूड़ा करकट कह दी हैं तो अब इस बात का जवाब दो कि भीष्म द्रोण के साथ कैसे मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी उनके साथ वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची थी, वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची थी। ये विचार अर्जुन के लिए अत्यंत दारुण था कि वे उनके साथ बाणों से युद्ध करेंगे, वाणी से भी नहीं कभी सोचा युद्ध करने का। कि मतलब तू मैं करना, मतलब मुंह ललाना कहते ना, बड़ों के सामने मुंह नहीं ललाना चाहिए, तो कभी मुंह ललाने की भी बात नहीं सोची है, वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची, और अभी बाणों से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने उस समय कहा कि यदि भीष्म और द्रोण को मारकर मुझे राज और भोग प्राप्त भी होंगे तो वे राज और भोग भी भीष्म और द्रोण के खून से सने हुए होंगे। मैं क्या करूंगा वो राज और भोग, इनके खून से सना हुआ राज भोग मैं क्या करूंगा। अर्जुन के कहने का आशय यह है कि वे जीवन भर जो कुछ भी देखेंगे वो सब उनका खून ही होगा। और जो कुछ भी छुएंगे वो भी उन महात्माओं का खून होगा। वे जो कुछ खाएंगे वो भोजन भी उनके खून से सना हुआ होगा। अर्जुन भीष्म और द्रोण को ना मारकर जीवन भर भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने के लिए तैयार हैं। राज ना मिले, जंगल में रहें जीवन भर, भिक्षा वृत्ति करें वो ठीक है, तथा जीवन भर जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, अथवा अन्यथा उनकी हत्या करके वे जिस सुंदर भवन में रहेंगे तथा जिस सैया पर सोएंगे वे भवन और सैया भी उन महानुभावों के खून से सने हुए होंगे। वो बड़ा महल है और सैया है, है? वो क्या होगा, इनके खून से सना हुआ मैं क्या करूंगा उसमें रह करके। ये सभी बातें अर्जुन के दिमाग में छिपी हुई हैं। तथा श्री कृष्ण ऋषिकेश होने के कारण अर्जुन के मन की ये सभी बातें जानते हैं। अभी तो अर्जुन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है, ये भगवान जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म तथा द्रोण के सम्मुख इसीलिए खड़ा किया कि अर्जुन अपने विचार प्रकट करें, तथा इस प्रकार श्री कृष्ण को अवसर प्राप्त होगा कि वे अर्जुन के अज्ञान को दूर करें। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक रोगी के रोग लक्षणों का पता लगाकर उसकी सही चिकित्सा करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अर्जुन के हृदय की निर्बलता का पता लगाकर भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को मौका दिया कि अपना जो अपनी निर्बलता है वो प्रकट करें, है ना। तब वो चिकित्सा करता है, जो चिकित्सक है वो चिकित्सा करता है जब रोगी के रोग लक्षण सामने आते हैं, है ना। इसके बाद संजय कहते हैं सर्वेषां च महिक्षताम, अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को समस्त राजाओं के सामने खड़ा किया। ठीक है, यहां पर राजाओं के लिए शब्द है क्या, महिक्षताम। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला महि और दूसरा ईक्षिताम। महि का अर्थ है क्या, पृथ्वी, तथा ईक्षिताम का अर्थ है इच्छा करने वाले। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को उन राजाओं के समक्ष खड़ा किया जो पृथ्वी को भोगने की इच्छा करते हैं अथवा पृथ्वी पर अधिकार जमाने की इच्छा करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब जीव भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है तो वह प्रकृति के द्वारा बांधा जाता है, तथा उसे प्रकृति तीन प्रकार के कष्ट देती है। पहला आध्यात्मिक कष्ट जो अपने ही शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, और दूसरा आदि भौतिक कष्ट जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, और तीसरा आदि दैविक कष्ट जो देवताओं के द्वारा अथवा दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। भौतिक प्रकृति का एक रूप पृथ्वी है, पृथ्वी भी है ना, भौतिक प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। तो पृथ्वी को भोगना चाहते हैं, मतलब भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। पृथ्वी एक देवी है, क्या, पृथ्वी एक देवी है जो समस्त चर तथा अचर जीवों को आश्रय देती है। भगवान के विराट रूप में पृथ्वी को भगवान का चरण बतलाया गया है। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है। चूंकि भगवान के चरण शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, क्या, भगवान के चरण शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भगवान के चरणों से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी देवी भी समस्त जीवों को रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है इसलिए पृथ्वी देवी भी आश्रय प्रदान करती है सब जीवों को। हाँ, ये पृथ्वी देवी श्री कृष्ण की पत्नी कही जाती है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे तो पृथ्वी देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया तथा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही वास्तव में इस पृथ्वी के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और पति हैं। पृथ्वी देवी को अत्यंत क्षमाशील कहा जाता है, बहुत क्षमाशील, क्योंकि हम सभी जीव अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं और पृथ्वी क्या करती है, क्षमा करती है। हम सब अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं, और पृथ्वी देवी उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करती है जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु के अपराधों को क्षमा करती है, क्योंकि माता है पृथ्वी। परंतु पृथ्वी देवी उन असुरों के भार से पीड़ित होती है जो माता पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं। ये असुर हैं जो माता पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं, वो तो माता है ना, अथवा परम पिता श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। क्या, पिता श्री कृष्ण उनसे द्वेष करते हैं और माता पृथ्वी को भोगना चाहते हैं, पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुई सीता को रावण भोगना चाहता था, वो सीता भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, वो माता है पृथ्वी, सीता भी माता है और रावण भोगना चाहता था, परंतु उसका सर्वनाश हो गया। जिस प्रकार सीता को भोगने की इच्छा करने से रावण का विनाश हो गया, उसी प्रकार पृथ्वी के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए ये राजागण पृथ्वी को भोगने की इच्छा करने से नष्ट हो जाएंगे। इस महाभारत युद्ध में जो राजागण एकत्रित हुए हैं ये सभी पृथ्वी देवी के लिए भार हैं, इसलिए पृथ्वी को भार लगते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि सबसे पहले पृथ्वी देवी ही इन राजा रूपी असुरों के भार से पीड़ित हुई। भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ क्यों हुआ, सबसे पहले पृथ्वी को ही कष्ट हुआ इन राजाओं के भार से ना। तथा गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवताओं के समक्ष उसने अपना कष्ट बताया, रो रो करके कष्ट बताया पृथ्वी देवी ने। उसके कष्ट की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता दुखी हुए और उन्होंने ये समस्या शिव जी को बतलाई। शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं था, शिव जी के पास कोई हल नहीं, अतः ये सभी देवता ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके श्री कृष्ण को ये समस्या बतलाने के लिए कहां गए, क्षीर सागर के तट पर गए। उसी पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां पर श्री कृष्ण महाभारत युद्ध की रचना कर रहे हैं, उसी पृथ्वी का भार उतारने के लिए। यहां पर महिषीताम शब्द उन लोगों के लिए भी माना जा सकता है जो अपनी भूमि में अत्यंत आ सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर भारत में, पाकिस्तान में अथवा अमेरिका में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी अथवा अमरीकी मानते हैं, तथा अपनी जन्मभूमि, देशभूमि अथवा मातृभूमि के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस प्रकार देशभक्ति तथा राष्ट्रभक्ति के